ओम शांति। लग जा गले हंसी पल लग जा गले ओ बाबा ये पल हो ना हो शायद नया जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले ओ बाबा ये पल हो ना हो शायद नया जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले ओ बाबा हमको मिली है आज ये संगम की ये घड़ी हमको मिली है आज ये संगम की ये घड़ी जी भर के मिलन मनाना आपको करीब से फिर नया युग में ये पल हो ना हो शायद नया जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले ओ बाबा साजन मेरी संगम में मिलेंगे बार बार साजन मेरी संगम में मिलेंगे बार बार बाहें गले में डाल के हम रोएंगे बार बार आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो शायद नया जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले ओ बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा ओम शांति।
शुक्रिया बहुत सुंदर आवाज और हम सभी के बीच में आज एक बाबा का ऐसा अनोखा रत्न है जो पूर्व और पश्चिम देश का मिश्रण है। आप अफ्रीका में आपने जन्म लिया है और लंदन में और अफ्रीका में आप बड़े हुए हैं और फिर इसके बाद देखो जन्मभूमि एक और इसके बाद विशेष रूप से भारत और इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई सारे इंटरनेशनल मंच जहां सेमिनार होते हैं यूथ के कहो हेल्थ के एनवायरमेंट सोशल इन सभी में आप बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लेते हो और गोपी बहन की एक बहुत अच्छी विशेषता है शी एक्सप्लेन्स नॉलेज इन सच अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वे। आप ज्ञान को इतने सुंदर तरीके से आप समझाते हो और वो ज्ञान की जो डेप्थ है काफी अच्छी तरह से चर्न करके वो ज्ञान को पेश करते हैं। ज्ञान का बहुत अच्छा विचार सागर मंथन है और ज्ञान के एक एक पॉइंट को वो सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो ऐसे गोपी बहन जो अपने हेडक्वार्टर में भी विशेष एनवायरमेंट हेल्थ और इसके साथ सेफ्टी यस इन तीन विशेष डिपार्टमेंट को आप संभाल रहे हैं तो आज देखिए इनको फीवर है चेहरे से लग रहा है क्या। फीवर है लग रहा है चेहरे से, फीवर होते हुए भी, बुखार होते हुए भी बाबा की ये बच्ची बाबा की सेवा के लिए तैयार है। और ऐसे फीवर में वो आज हम सभी को विशेष गाइड करने जा रहे हैं साइलेंस पावर का प्रयोग कैसे करें। लेकिन इसके पहले बहनों की बहुत दिल है कि ऐसे भगवान के इस नूरे रतन का स्वागत करते हैं।
बाबा ने यह यज्ञ रचा है, यज्ञ में बहुत सारी बातें होती हैं। यज्ञ में हॉस्पिटल है जो विकारी आत्मा आकर के हील होती है, पतित से पावन बनती है। यज्ञ में पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है जो श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद मिलता है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से धोबीघाट के रूप में, सुनहरे के रूप में, बागवान के रूप में आकर के बच्चों को परिवर्तन करता है। उस परिवर्तन में ही हमारी भला है। मुझे संबंध से शुरू करना है, क्योंकि जब साइलेंस की बात आती है, जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें आप बहुत फेथ रखते हैं और पता है इस व्यक्ति के ऊपर आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, तो क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? बेफिकर बन जाते हैं ना, संकल्प नहीं चलते हैं ना, बैठा है ना बाबा। जब संबंध में कमी होती है, फेथ की कमी होती है, तब अपना मन सोचने चलता है, क्योंकि वो जो बहुत समय से सेपरेशन हुआ है ना, अकेलेपन महसूस हुआ है, बस मैं ही हूं, मुझे अकेला करना है, मुझे पहुंचना है, मुझे वो मदद करेगा या नहीं पता नहीं है, वो सेपरेशन के कारण ही आपका मन जैसा एक अलग रूप ले लिया है। वास्तविकता में तो मन कुछ है ही नहीं चीज, वो तो हमने बड़ा बना के रखा है। सोच क्यों चलता है कई बातों का? प्रोजेक्ट कर रहे, सोच चलता है ठीक होगा नहीं होगा, जो ड्रामा में होगा वो ही होगा ना, करण करावनहार करेगा वो ही करेगा ना। तो पूरा जो ज्ञान है हमको निरसंकल्प बनाने का के लिए ज्ञान दिया हुआ है। अभी आप अपने आप से पूछो कहां तक वो निरसंकल्प अवस्था हुई है। मैं आत्मा ईश्वर की संतान हूं, कितना सुख मिलता है, आनंद मिलता है। एक सेकंड के लिए इसके डेप्थ में चले जाओ, मैं आत्मा ईश्वर की संतान हूं। जैसे कोई बच्चा होता है अपने मां की गोदी में बैठ जाता है, शांत हो जाता है ना, स्मृति का मतलब ही हमारी शांति की शक्ति का स्विच ऑन हो। बाबा वो कल्प पहले वाला बाबा, मैं केवल एक बिंदु रूप आत्मा नहीं हूं, 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं। जब वो अनादि काल की स्मृति रहती है तब मन शांत होता है, रिलैक्स होता है। फिर बाबा क्या सिखा रहा है मुझे, बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो, ये ध्यान रखना कि कोई भी कर्म विकर्म न हो। जब कर्म विकर्म होता है तब विवेक खाता है ना, मन चलता है, झूठ बोला विवेक खाता है, कुछ छिपा के ले लिया विवेक खाता है। तो बाबा ने इतना सिंपल ज्ञान दिया है हमको, पुरानी संस्कार और पुराने संकल्पों से छुटकारा देने के लिए। फिर चक्र का ज्ञान कि वो कौन सा टाइम है, अभी चढ़ती कला का टाइम है ना, अभी कल्याणकारी युग है संगम युग, तो नुकसान में भी कल्याण है। ये जब यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ तब तीन चार मास पहले जो हमारे भाई बहन थे, एक पोर्ट की सिटी थी, बिल्कुल पोर्ट समुद्र के सामने थी, तो उनका सेंटर वहां था। तो वॉर ब्रेकआउट होने से पहले लैंडलॉर्ड ने उन्हों को बोला, आप इधर से निकलो जल्दी, मुझे ये मकान चाहिए, जल्दी जल्दी निकलवाए, अभी शॉर्ट नोटिस में कहां जाए। तो देखा ढूंढा, कोई दूसरी जगह मिली शहर के बीच में, हालांकि थोड़ा छोटा सा था, शिफ्ट हो गए। और जैसे वॉर शुरू हुआ वही पॉट पहले बॉम्ब हुआ। कहने का भाव क्या है, हम संगम युगी वासी है, ईश्वर की संतान है। जो ऊपर ऊपर से आपकी कंफर्ट जोन टूट रही है, आप समझते आ रहे ये तकलीफ वाली बात है मेरे लिए, आप खुद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तभी सोच चलते हैं ना, क्योंकि मुझे वो चाहिए। संकल्प का बीज है डिजायर, कुछ न कुछ इच्छा अंदर रही पड़ी है, इसीलिए तो बार बार संकल्प चलता है। आखिर आपको चाहिए क्या, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसे चाहिए? हाँ बाबा, थोड़ा होता तो अच्छा होता ना। तो रूट को ठीक करना है पहले। सभी पूछते हैं मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, वो क्यों? अरे भाई देखो तो सही, एक तरफ आप बोल रहे हैं बाबा मिला है, और दूसरे तरफ भाई पैसे की चीजों के पीछे भाग रहे हैं आप। वो संतुष्टता, वो सुख, वो शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा वर्षा है जो बाबा दे रहा है। तो पहली रुचि होनी चाहिए इसके लिए। देखो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है कि बच्चे ड्रामा में आपको कौन सी स्थिति में रहना है, जब ड्रामा के फील्ड पे आते हैं तो कौन सी स्थिति में रहना है, हाँ कौन सी स्थिति, साक्षी की स्थिति, माना देखते चलो किसी का पार्ट। मुझे याद है यूएसए में बहुत समय पहले, 25 साल पहले मैं जब गई थी, तो वहां के जो लोकल यूथ लीडर्स हैं उनकी रिट्रीट चली थी, और हमारी एक बीके टीम थी, और उस बीके टीम में एक बहन थी जो सारा टाइम उसको ही हर सेशन करना था। हालांकि 4-5 लोग थे, लेकिन जब भी कोई सेशन आता था कहते मैं करूंगी ये, मैं करूंगी ये, तो ग्रुप से रिएक्शन आया उसके प्रति। फिर भी उसने 3 सेशन तो ले लिए, और उसको आता तो नहीं था लेकिन उसका अंदर बहुत जोश था, मैं करूं। अभी उस समय मैं क्या बोलूं, जब कोई व्यक्ति ऐसे जोश में है, जिद करती है मुझे दो मैं करूंगी, मैं बिल्कुल शांत हो गई। प्रॉब्लम तो आया सेशन में लेकिन मैं शांत हो गई। मैंने बोला बाबा इस आत्मा को अपना ही रियलाइजेशन करने दो, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं, मैं बोलेंगी तो फिर मेरी दुश्मन बन जाएगी, दीदी ने क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, मुझे चांस क्यों नहीं दिया। 2 दिन के लिए चुप रही। 3rd दिन में वो खुद सामने आती है, दीदी मेरे से ये सेशन नहीं होगा, आप इसको दे दो। कहने का भाव क्या है कि हमारी साइलेंस एक मिरर बन जाती है। जब कोई अपना रोब अभिमान या कुछ भी दिखाता है उस समय हमको कंबल नहीं खींचना है, ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, साइलेंस में चले जाओ, वो अपने आप ही कंबल छोड़ देगा, होता नहीं है ना उसके। अभिमान का शो केवल 5 मिनट का शो होता है, उसके बाद आत्मा को खुद रियलाइज होगा मेरे से नहीं होगा ये, वो खुद आकर के वापस दे देंगे। तो मैंने उस 2 दिन में देखा, मेरी अवस्था को मैंने देखा। थोड़ा शुरू शुरू में डिफिकल्ट था, क्योंकि वो संस्कार है ना, किसी को समझाओ, किसी को मनाओ, वो सारे संस्कार है हमारे अंदर। और फिर औरों की बातों में और औरों की चक्कर में हम फंसते हैं और हमारी मानसिक अवस्था डवाडोल होती है। तो पहला रिक्वायरमेंट है शांत रहने के लिए, ड्रामा के फील्ड पे साक्षी दृष्टा रहना है। हर एक व्यक्ति अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक व्यक्ति। और आप थोड़ा सा भी सोच करेंगे ना इसके प्रति, तो आपने अपने संकल्पों से ब्रिज बना दिया, फिर वो जो बोलेगा जो करेगा वो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। धीरे धीरे उसके संस्कारों के इफेक्ट आपके ऊपर आएगा और धीरे धीरे वो इफेक्ट एक आपके अंदर डिफेक्ट बन जाएंगे, है ना। आप किसी की कमजोरी सोचते हैं, वही कमजोरी आपके अंदर पैदा होती है। अरे ये खिचड़ी का डब्बा तो नहीं है, साक्षी हो जाओ। क्या चाहिए आपको कि वो आपकी बात माने। दादी ने भी हमको बोल दिया था बहुत समय पहले कि मैंने ये भी छोड़ दिया है कि कोई मेरी बात माने। तो सूक्ष्म में जो हमारी आदतें हैं एक्सपेक्टेशन में रहने की, उसको तोड़ना है पहले, क्योंकि उसके कारण ही हम परेशान होते हैं। एक्सपेक्टेशन का रग है कि मेरा विचार, मेरा जो है ऐसा होना चाहिए, जो मेरी दृष्टिकोण है, जो मेरा सोच है ऐसा चलना चाहिए। ये जो सूक्ष्म में मेरापन होता है ना, इच्छाएं पैदा करती है और उस इच्छा से ही हम मार खाते हैं। मैं बहुत बारी ये उदाहरण देती हूं, देखो आप सभी ये सीट पे बैठे हैं ना, कंफर्टेबल बैठे हैं ना, सभी कंफर्टेबल बैठे, हाँ इतना कंफर्टेबल बैठे कईयों को नींद आ रही है। चलो आप थोड़ा उठो, 5 मिनट बाहर जाओ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, पैदल करो, फिर वापस कमरे में आएंगे तो कहाँ आएंगे आप, कहाँ आएंगे, उसी जगह पे। क्यों, इतनी सारी जगह तो खाली है। अच्छा मेरी जगह है, अच्छा 45 मिनट के लिए बैठे हो और सडनली मेरी जगह बन गई है क्या। हाँ फिर क्या होता है, कोई और वहां बैठा होता है तो, हाँ संकल्प आता है, अरे मैं यहां पे बैठा था, ये कहां से पहुंच गया बंदा, ये मेरी सीट पे बैठा है। अच्छा ना आप ये सीट लेके आए हो, ना ये सीट आपकी है, केवल थोड़े समय की बैठक में आपकी बन गई है। ये एक जड़ में एक बीमारी है, मैं आपको बताऊं, एक बहुत डीप बीमारी है मोह की, छोटी छोटी बातों में मेरापन। मैंने कुछ सेवा में हाथ लगाया, बस मेरापन हो गया, ये कोई और नहीं टच करे। अरे भाई ये पूरा संसार सर्व के सहयोग के आधार से चलता है। जो आप बोलते हैं मेरा घर, आपने खुद अपना घर अपने हाथों से बनाया है, चलो बनाया भी होगा तो क्या सीमेंट ने आपने अपने हाथों से बनाया है, लकड़ी की चीजें आपने हाथों से बनाई है, ये तो प्रकृति की गिफ्ट है हमारे लिए। और हम बस मेरा होकर के, बस मेरा घर, मेरा जॉब, मेरी गाड़ी, इतना धोखे में जी रहे हैं हम, तो मन कैसे शांत रहेगा। मेरेपन में जीते हैं तो डर रहता है ना, कोई घर को कुछ हो ना जावे, गाड़ी को कुछ हो ना जावे। आपने खुद ही आपके मन को परेशान किया है, फिर औरों को दोषी बनाते हो। देखो ये मेरा सीट, मेरी सीट ले ली, कितनी बचपना है। अभी ये डायनामिक छोटी सी बात में है, सीट के हिसाब से है। आप सोचो, आप इसको कई गुना मल्टीप्लाई करो कई बातों में। हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं मेरेपन के कारण, इसीलिए मन चलता है फिकर में, डर में। रूट में जाकर के उस चीज को छोड़ो। दादियों ने तो त्याग माना, क्या ये भी त्याग किया, मेरी सीट है, मेरी गाड़ी है। पता है दादी को जब अहमदाबाद लेके जाते थे, जब कुमार वापसी आता था, दादी उनको कहती थी पूरा गाड़ी भर करके लेके आना है, अकेला नहीं आना है। लंदन क्लास में जब ये सब बहुत दूर दूर से आते थे, तो दादी ने ये पार्ट पक्का किया, सभी को चार पांच लोगों को लेके आना है क्लास में, ऐसे खाली गाड़ी लेके नहीं आनी है। माना अंदर से ये रुचि रहे कि जो भी मेरी जिंदगी में है वो चीज सफल हो सेवा में। इसको एक सेवा की भावना कहेंगे ना। लेकिन ये होगा तब जब हम मेरा बाबा बोलेंगे, यही चाबी है हर चीज की। मेरा पद, मेरा नाम, मेरी इज्जत सब को निकालो, बस मेरा बाबा। तभी आप कभी अपसेट नहीं होंगे, सेंसिटिव नहीं होंगे कोई बात में। मैंने क्यों यहां से शुरू किया, क्योंकि ये सारी बीमारियां आपकी शांति को खत्म कर लेती है। अभी इस बीमारी को जांच करो रग से और निकालो उसको, तब जाकर के अंदर से एक आजादी महसूस होगी। मुझे कोई कुछ नहीं करता कर सकता है, चाहिए क्या। हम संबंधों में, परिस्थितियों में हार क्यों खाते हैं। कोई व्यक्ति से हार नहीं खाते हैं, कोई सिचुएशन के हार नहीं खा के कारण हार नहीं खाते हैं, हमारी इच्छा के कारण हम हार खाते हैं। हमारी इच्छा के कारण हम मजबूरी में आ जाते हैं। तो पहले ये फाउंडेशन को ठीक करो, बहुत जरूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को टाइम देना बहुत आवश्यक है। खुद को टाइम दे करके, खुद को साक्षी होकर के देखो, मेरे असली संकल्प क्या है और किसी और के प्रभाव का संकल्प क्या है। आपने कुछ बात सुन लिया, कुछ बात के प्रभाव में आ गया, वो भी आपके मन को चलाएगा। एक दोनों के ऊपर प्रभाव डालते रहते, जैसे रंग फेंकते हैं ना, और जैसे हम किसी के प्रभाव में आते तो क्या होता है, इसकी पहली निशानी क्या है। जैसा वो सोचता है हम वैसे सोचते हैं, जैसा वो बोलता है हम वैसे बोलते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे, तो हमारी पर्सनैलिटी कलर हो गई ना। चलो कोई और आपको बता सकता है, अरे बहन जी आप इसके प्रभाव में मत आना, चक्कर में मत आना, कोई रियलाइजेशन तो दिला सकता है। फिर आती है कंट्रोल की बात, मुझे कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। वास्तविकता में कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके पुराने कुछ ऐसा संस्कार है जो आपको मजबूर और कंट्रोल कर रहा है। आपके मन को एक बंधन में रखा है और निराशा महसूस करें, मैं क्या करूं। क्योंकि कंट्रोल की ये निशानी है कि आपकी पर्सनालिटी सप्रेस हो जाती है, आपको पता नहीं होता है आपकी ओरिजिनल थॉट्स क्या है, जैसे मन ब्लैंक हो जाता है, ये सप्रेशन की निशानी है। माना पूरी हमारी पर्सनालिटी ढक गई। चलो हम इससे भी, इसको भी हम रियलाइज करके, पुरुषार्थ करके छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जो तीसरी बात है वो बहुत मीठी है, वो है मोह। आप मोह में डूबना चाहते हैं, इसीलिए मोह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि आप इसको चाहते हैं और वो बिल्कुल सत्यानाश कर देती है आपकी पर्सनालिटी को। वो व्यक्ति बार बार आपके मन में आता रहेगा। आपकी लाइफ कहां है, आपकी पर्पस क्या है, वो तो सब ओम शांति। ये बहुत ऊंची मंजिल है, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चों को, बच्चे मां मेकम याद करो। तो जो पहला लेवल है शांति का, वो है कर्मेंद्रियों से डिटैच होना। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके पुराने संस्कार, रजो प्रधान या तमो प्रधान संस्कार, कोई एक कर्मेंद्रियों के आधार से, विकार में जाने के आधार से बना है। आप कर्मेंद्रियों से डिटैच नहीं होंगे तो वो संस्कार आपको चलाएगा अच्छी तरह से। तो पहले पहले जब भी टाइम मिले, अंदर ध्यान लेके चलो और पूरी अपने अपने आप को अंदर महसूस कीजिए, आखिर मैं कौन हूं। फिर इस शक्ति को धीरे धीरे एकाग्र कर लो, और भ्रुकुटी के बीच में इसको एकाग्र करके ये स्मृति में रहो कि मैं आत्मा अपनी सीट पे बैठ करके इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। इससे क्या होता है, पूरा शरीर रिलैक्स होता है, एक शीतलता पैदा होती है अंदर से। ये बीच बीच में ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इसको कहेंगे अशरीरीपन का अभ्यास। बस पूरा कॉस्ट्यूम, नाम रूप का वस्त्र ही छोड़ दो, बिल्कुल अपने अंदर मस्त बन जाओ, लेट गो करो। विदेही बनना है तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेप है कि घर की याद होनी चाहिए। जब घर की याद रहती है ना, तब पूरी नेगेटिविटी खत्म होती है। हम कहां से आए हैं, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर जब हम और साइलेंस का प्रयोग करते हैं तो आती है हमारी अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति कोई मोटे रूप से एंजल की स्थिति नहीं है, जिसके पास पंख है और उड़ रही है, ये तो मोटापना है। अव्यक्त स्थिति है सूक्ष्म अवस्था। आपकी सूक्ष्म क्वालिटीज, आपकी सूक्ष्म शक्तियां, उसका अनुभव। शुरू शुरू में बाबा क्या कराता था दादियों को, ऊपर छत पे बैठो, एकांत में बैठो, एक संकल्प लेकर के बैठो, मैं शांत चित आत्मा हूं। उसके डेप्थ में चले जाओ। फिर मैं मास्टर प्यार की सागर हूं। जब हम इन क्वालिटीज का रस लेते हैं, तब हमारी सूक्ष्म अवस्था, हमारी लाइट बढ़ती है, हल्कापन महसूस होता है, कर्मेंद्रियों से डिटैच होने से शीतलता महसूस होती है। जब हम हमारी क्वालिटीज के डेप्थ में जाते तो हल्कापन महसूस होता है, और जब हम हल्के हो जाते हैं तब हम बहुत सारी बातों को डोंट माइंड डोंट वरी ऐसे ऐसे नो प्रॉब्लम कर सकते हैं, बड़ी बात को छोटी बना सकते हैं, बिंदु लगा सकते हैं, जब आप भारीपन के अवस्था में हो तो बिंदु नहीं लगता है. नोट किया है ना आपने, नहीं लगता है. तो ये एक जैसे अपने साथ एक लव होना चाहिए कि मुझे वो एक अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है, शीतल रखना है, शांत एक स्वीट साइलेंस बनी रहे अंदर. ठीक है, जो भी करना है शांति से काम लो ना, प्रेम से किसी के साथ बात करो ना. उसमें आपकी धारणा बनी होती है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा और बाजू वाले व्यक्ति को भी वो उसका फायदा मिलेगा. फिर आती है डेड साइलेंस. साइलेंस, स्वीट साइलेंस और डेड साइलेंस. और डेड साइलेंस में विदेही अवस्था चाहिए. मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, घर में कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कितना शांत हो जाता है वातावरण. तो आपके उस घर में भी एक भी कर्मेंद्र वहां तक नहीं पहुंच पाती है उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कर्मेंद्रियों में भी इलेक्ट्रिकल करंट है ना. लेकिन घर जाने के लिए आपको ये वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, तो करंट ही नहीं है, तो एकदम डेड साइलेंस है वहां पे. इसीलिए उसको, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए. देखो कई बातें आती है हमारे लाइफ में, किसी ने बस अपना जोश में आकर के कुछ बोल दिया, भूल जाओ. आप खिचड़ी की बातें मन में रखेंगे ना, मन कभी शांत नहीं होगा. आप खुद अपनी शांति को गवा रहे हैं. तो एक अंदर आपको कौन सी अवस्था में रहना है, पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए. कौन सी अवस्था में रहना है आपको, ये क्लियर करके फिर अपने मन को सावधान करो, लाइन में चलाओ कि ये बात मेरी बात, मेरी फायदे वाली बात नहीं है, इसको छोड़ो. कल रात को कोई बहन ने मुझे कोई दूसरे देश से फोन किया, कहती है आज दो बहनें ने मेरे सामने इतना गुस्सा किया, मैं क्या करूं. मुझे पता नहीं था वो गुस्सा करने का मतलब क्या था उनका. मैंने बोला ये सारी चीजें रात को बैठ के क्यों सोचती है, तुम छोड़ो ना, भूल जाओ ना. उन्होंने गुस्सा किया वो ही पछताएंगे ना, तुम छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ. बस इतना ही सोचो, थैंक यू बाबा, मेरा कर्म का हिसाब किताब चुप तो हुआ. या ये रियलिटी है, जब छोटी छोटी कुमारियां शुरू शुरू में मम्मा के पास जाते थे, मम्मा को बोलते थे मम्मा ये हमारी बड़ी बहनें हमको बहुत डांटती है, तो मम्मा क्या जवाब देती थी, ऐसे समझो कि आपके कर्म के हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं. थैंक यू, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा चुप तो हो रहा है. थैंक यू, क्योंकि ये भी बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण एक दूसरे के लिए निमित्त बनेंगे कर्म का हिसाब किताब चुप तो करने के लिए. इसीलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, आगे बढ़ते चलो. एक सौभाग्य की बात है कि मुझे इतना एक श्रेष्ठ ईश्वर की चुनी हुई रतन से मेरा कर्म का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है. रिलैक्स. कितना किया है 63 जन्मों में, कितने पाप कर्म किए हैं. क्या आपको लगेगा कि इस एक जन्म में सभी आपको अच्छा, सभी आपको अच्छा ही मानेंगे, बिल्कुल नहीं. जो भी हिसाब किताब आपने खोला है वो अवश्य आपके सामने आएगा. तो ये अवस्था बनी रही. एक बारी गुलजारदारी को पूछा था, चिटचैट थी विदेशियों के साथ, तो दादी को पूछ रहे थे वो लोग, दादी जब आपके सामने कोई घटना आती है या ऐसा कोई व्यवहार करता है तो आप क्या सोचते हो, उस समय कैसे अपने मन को मनाते हो. दादी बोली मुझे ऐसे लगता है कि मुझे उस समय सहनशीलता की गुण की प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस करने की मौका मिलता है. गुण स्वरूप बनना है ना, अभी घटनाएं नहीं आएंगी तो गुण कैसे यूज करेंगे। इसलिए मुख से कभी कोई व्यक्ति या वस्तु या सिचुएशन के प्रति वाई शब्द नहीं उठना चाहिए। जो होगा सो होगा, लेकिन परेशान करने वाली जो चीजें हैं वो हमारे देह के भान के कनेक्टेड है। मैं फिर से वहां से शुरू करती हूं कि ईश्वर के साथ सर्व संबंधों का रस बैठा है, नहीं बैठा है तो कोई ना कोई व्यक्ति आएगा और उस संबंध में आपको आकर्षण करेगा। क्योंकि जब संबंध में कमी होती है, विश्वास नहीं होता है ईश्वर के संबंधों में, तब आप इच्छाएं पैदा करते, कोई मुझे कुछ देवे, मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट देवे। ब्राह्मण जीवन में इंडिपेंडेंट बनना माना एक बाबा दूसरा ना कोई। होता क्या है, एक बाबा और एक कोई, बस एक ही है बाबा, ये होता है। तब जाकर के आपकी मानसिक अवस्था डावाडोल में आती है। कोई व्यक्ति को बिठा दिया है ना, विदेही बाप को बिठाएंगे तो बुद्धि कभी हलचल में नहीं आएगी, क्योंकि एक टिक निशाना मिल गया। जब भी कोई बीच में कोई व्यक्ति आता है तो आपका नंबर नंबरवार बन जाता है, क्योंकि आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आपका नंबर टू बन गया, फिर तीसरे को बिठाएंगे आपका नंबर थ्री बन गया, चौथे को बिठाएंगे आपका नंबर फोर बन गया। तो हमारी अवस्था नंबर वार के आधार से होती है, जितने लोगों को हम याद करेंगे उतनी हमारी नंबर वार अवस्था बनती है। हम तो पीछे जाते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ी क्यू बनती है ना, ये नहीं देखते हैं हम। फिर हम बाबा को धोखा देते, खुद को धोखा, अरे बाबा ये मेरा बेटा है ना, ये मेरा हस्बैंड है ना, उसकी बुद्धि टच करो ना। पतियों का पति है वो, उसको पता है क्या करना है उसके बच्चे के साथ। तो ये मैं कहूंगी, एक कुट कुट करके खुद के संस्कारों को चेक करो, और ये जो उल्टी सुल्टी बातें जो आपने पकड़ के बैठी है ना, अपना सोच विचार, बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये आंसर चाहिए। कई बारी लोग मेरे पास आते हैं, प्रश्न लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास ऑलरेडी वो प्रश्न का जवाब उनके मन में है, और वो चाहते हैं मेरे से कि मैं वो उस जवाब दू। बोले जाओ, आपका प्रश्न प्रश्न नहीं है। हाँ, आपको जैसे मेरे पास आए हैं कि थप्पा लगाने के लिए, लेकिन ये नहीं देख रहे आप कितना मनमती बन रहे हैं इस समय में। किसने बोला आपको इतना सोचने के लिए, आपने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है? रिस्पॉन्सिबल रहना है, धारणा में प्यारा रहना है, शांतचित रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, सम्मान देना है, धारणा में रिस्पॉन्सिबल रहना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, हर एक को परिवर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने उठाई है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, अपने आप को चमाट दे दो ना, सीधा करो अपने आप को। ऐसा क्यों अपना बुद्धि का ट्रैक चलता है? लेकिन आदतें बनी है ना, फिर हम किसी से शांति मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, अरे हमको धक्का मार के चलाओ ना बहन जी, आपको प्रजा में आना है क्या? किसको प्रजा में आना है? अच्छा, अभी तो हाथ नहीं उठा रहे। किसको राजा बनना है? अच्छा, तो राजा पने की क्वालिफिकेशन ये है, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा बैठा है ना, हम जब योग में बैठते हैं ना, तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं, ये केवल हमारे लिए नहीं है लेकिन बहुतों की कंप्लेंट आती है, बहन जी हम बाबा के सामने बैठते लेकिन योग नहीं लगता है, तो इसलिए कान में वो पहन के योग करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, ईयर प्लग बैठ के बस सोचते हैं मैं कोई गीत सुनूं तो योग लगेगा। कमाल है, मैं आपके सामने ऐसे बैठी और मैं अपने हेडसेट लगाओ, मैंने बोला ठहरो मैं थोड़ा मेरा म्यूजिक सुनूं फिर मैं आपके साथ वार्तालाप करूं, तो आपको तो अजीब सा लगेगा ना, ये क्या बोल रही है बहन जी, सामने तो बैठी हूं, मेरे साथ तो बैठे ना व्यवहार कर। कल परसों ऐसे देखा दो कुमारियां दरवाजे के बाजू में खड़ी थी ऐसे दूर दूर के ऐसे से, मैंने बोला चप्पल निकाल के अंदर आओ, बाबा को मिलो प्रॉपर रूप से, ये कोई मंदिर नहीं है कि दरवाजे में रुक करके मिलना है बाबा को, बस जूते नहीं निकालने थे। अरे भगवान इतना दूर आकर के हमको पढ़ा रहे हैं और आपने अपनी जूते की कंसर्न हो रही है, क्या है हमारा जास्ती पुरुषार्थ कन्वीनियंस का हो गया है, कन्वीनियंस वाला पुरुषार्थ करना चाहते हैं। आप जब कोई महान हस्ती को मिलेंगे तो थोड़ी दरवाजे से मिलेंगे, मौका मिलता है तो तुरंत नजदीक सामने आ जाएंगे ना, भल कुछ भी छोड़ना पड़े, बैग छोड़ना पड़े, जूता छोड़ने पड़े, और ये बाबा के रूम में इतना नहीं कर सकते क्या, रिस्पेक्ट से बाबा के सामने नहीं बैठ सकते क्या? और जब बाबा के सामने बैठते हैं तो पहला क्या होता है, टू टू चलता है अंदर से, अरे इतनी महान हस्ती के सामने आप बैठे हो, बाबा से दृष्टि तो लो और दृष्टि से फीलिंग तो करो कि बाबा क्या आपको देना चाहता है। आप जल्दी से जल्दी अपना मन चलाएंगे तो जो बाबा देना चाहते हैं वो मिस हो जाता है, क्योंकि देखो बाबा ने पहले आपको पहचान लिया है, आपने बाबा को पहले नहीं पहचाना था, बाबा ने ये हीरो और हीरे को पहचाना, तो बाबा की दृष्टि में आपकी संपन्नता है, तो बाबा की दृष्टि एक आईना बनता है। तो जब हम ऐसे बड़े बाबा के सामने जाते हैं तो पहले हमारा फर्ज है दृष्टि स्वीकार करो बाबा से, मन बुद्धि को शांत रखो, तब फिर आप कैच करेंगे बाबा क्या देना चाहते हैं आपको। इसको कहेंगे रॉयल्टी संबंध में, आपकी बात तो पाई पैसे की बात है, क्या है आपके विचार में जो इतना सोने का वैल्यू है उसमें कुछ है क्या, तो ऐसी बातें बाबा के सामने क्यों लेके चलते हैं, लिख दो मन से खाली कर दो भूल जाओ फिर बाबा के सामने बैठो। समझो आपके सामने कोई व्यक्ति आवे और बार बार अपनी बातें वॉमिट करे तो क्या आप उस व्यक्ति के सामने रहेंगे, रहेंगे बार बार वही बात की रेपिटेशन करता रहता है, साक्षी हो जाएंगे ना, फट जाएंगे ना उससे, तो बाबा के सामने क्यों करते हैं आप, फिर बाबा भी साक्षी हो जाता है, अरे ये बच्चे अपने धुन में है दुनिया में छोड़ इसको। तो एक प्रकार की एक सेंसिटिविटी बनी रहे ईश्वर के संबंध में, कुछ भी हो जाए पहले हमको अपने सीट पे बैठ करके साक्षी दृष्टा की अवस्था पे सेट हो करके फिर जहां पे आवश्यकता है वहां पे दिमाग को चलाना है, अदरवाइज नो नीड। हमने एक युक्ति रची है, जैसे ये कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीटिंग में बैठना होता है, कई सारी बातें डिटेल आती है यज्ञ की, मैंने यहां पे ऑफिस बना दी है और इस ऑफिस में केवल हम और बाबा, और बाबा की बातें, तो मैं कान थोड़ा 20% खोलती हूं और जो आवश्यक की बातें हैं बाबा की बातें वो ही उस ऑफिस में अलाउ करती हूं। तो एक बार एक भाई आया, पूरे डिटेल अपना जो कार्य था पूरा डिटेल लेकर के आया, इतना अपना अपना बोलता रहा, तो मैं अपने ऑफिस में बैठ गई, मैंने बोला बाबा मेरी बुद्धि टच करो क्या बोलना है इस भाई को। आराम से अपने ऑफिस में बैठ करके मैंने सुनी सारी बात, 20% खोला और बीच में एक दो बातें ने बाबा ने बुद्धि टच किया, इसका प्रश्न पूछो, इसका अंडरलाइन करो, बस वो बात बता दिया, 5 मिनट में काम खत्म। अभी घर जाने का टाइम है और आप छोटी छोटी बातों का विस्तार करते रहेंगे तो आप ही खुद अपना जाल फंसा के फंस रहे हैं। आप इसीलिए कोई चीज 20 शब्द यूज है, 10 शब्द यूज करो, इसको सार में कर दो, शॉर्ट एंड स्वीट, समेटो आगे बढ़ो, समेटो आगे बढ़ो। बहुत कुछ होता है लेकिन आंखों में निशाना होना चाहिए बाबा, बॉडीलेस बाबा, तब जाकर के आप छोटी मोटी बातों को पेरिफरी में निपटा सकेंगे। उस दिन हम आंखों की चेकिंग के लिए गए थे, वो जो ग्लूकोमा टेस्ट होता है ना, तो क्या बोलते हैं कि एक बीच में ऑरेंज कलर का लाइट है, आपको अपनी आंख वहां ही रखनी है 2 मिनट के लिए और आंख वहां से हटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज टेस्ट फेल होता है। तो आंख को वो उस छोटी सी लाइट पे, जैसे वो निशाना बन गया, उस पे टिक रखना है, बाकी फिर और पेरिफेरी में दूसरे लाइट फ्लैश होते हैं और जैसे लाइट फ्लैश होता है आपको बटन दबाना है। तो मैंने सोचा ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में कि हमारी बुद्धि में विदेही बाबा को ही बिठाना है, वो निशाना होना चाहिए बुद्धि में, तब और सारी बातें साइड सीन्स होते हैं, आपका ध्यान कोई व्यक्ति या वस्तु में डूब नहीं जाता है। क्योंकि जैसे आपका ध्यान कोई व्यक्ति और वस्तु में डूबा, माना वो आपको कंट्रोल करने का शुरू हो गया, तभी फिर आप चिल्लाते हो मेरी जीवन मेरी नहीं है। अरे आपने ध्यान किसको दिया है, किसको दिया है आपने? तो एकांत में बैठने का एक रस ले लो। आप जहां पे भी आए हो, आप सोशलाइजिंग के लिए नहीं आए हैं, वो तो आप घर में भी कर सकते, बैठ के गपशप करना, लेकिन यहां पे जो एकांत का मौका मिलेगा, समझो ये बाबा की कुटिया है, बाहर बैठो, बस एक बाबा दूसरा ना कोई, अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ, इतना मजा आएगा उस एकांत में, अपनी शक्ति एकाग्र होंगी तब ईश्वर से रस लेंगे ना। लेकिन कई लोग कहते बोरिंग लगता है तपस्या करना, बोरिंग लगता है क्योंकि आप कर्मेंद्रियों से इतना अटैच हो कि जब तक आपको कुछ खान पान ना मिले, कोई आपको अच्छी चटपटी बातें ना सुनावे, वो तब तक वो भक्ति का संस्कार है ना, बहुत डीप है। इसलिए ज्ञान में आकर के वो पढ़ाई जो होनी चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसकी बहुत रुचि बढ़ानी होती है। मेरे पास टाइम है ना, पर्सनल एक प्रोजेक्ट बनाओ। हमने बहुत साल पहले बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हैं खुद की उन्नति के लिए। हम जब पहले पहले वो रिट्रीट सेंटर में रहते थे, बीच में आधा घंटा टाइम मिलता था, लेकिन हमने कई बातें बाबा की मुरलियों से निकाल के 1 वीक हम देते हैं एक बात के ऊपर। पूरा हम रिसर्च करते थे, आखिर बाबा ये अवस्था के बारे में बता रहा है, ये क्या है अवस्था, पूरी मुरलियां निकाल के हम 1 वीक के लिए उसके ऊपर अभ्यास करते थे, रिसर्च करते थे, और जब तक उस अवस्था का प्रैक्टिस नहीं हुई तब तक हम छोड़ते नहीं थे उसको। फिर गुणों का प्रोजेक्ट शुरू किया, अपने आप को जांच किया अंदर से, कौन सी गुण की कमी है, नम्रता का गुण, धैर्यता का गुण, संतुष्टता का गुण, उसके ऊपर रिसर्च करके धारण करना है ना। आप इन चीजों पे अटेंशन नहीं देंगे तो कैसे धारण होंगी बातें, ऐसे चलते फिरते थोड़ी हवा में होंगी। तो वो अटेंशन रहता था, जब मेरा प्रोजेक्ट है इस वीक में मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं, ये अभ्यास करूंगी इस वीक में, तभी आकर के अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं पुरुषार्थ करती हूं ना, सच्चे दिल की सिंसेरिटी से पुरुषार्थ करती हूँ, ऑटोमेटिक शांत हो जाता है अंदर से। मैं जो हूं जैसी हूं बाबा की हूं ना। लेकिन आप इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो बेचैनी अंदर शुरू होती है, सब कुछ ना अच्छा लगता है। कुछ भी हो जाए, हमको ना किसी को देखना है, ना कोई सिचुएशन को देखना है, हमको हमारा पुरुषार्थ को देखना है। मुझे क्या करना है यहां पे? इसीलिए दादी लास्ट में, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, बस डेडली फोकस चाहिए इसके ऊपर। इधर उधर इधर उधर शॉपिंग के लिए गए, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बहुत अच्छा है, गए काम के। यू नीड डेडली फोकस, क्योंकि भक्ति की एक बीमारी है नाम रूप में फंसने की बीमारी। आजकल ब्राह्मण कल्चर में सेलिब्रिटी कल्चर हो गया है। कितने लोग आते हैं, बहन जी आपको यूट्यूब में देखा, अच्छा कोई यूट्यूब भगवान है क्या? फिर अपना मोबाइल फोन निकालते, बहन जी हम आपसे एक फोटो लेना चाहते हैं। मैं बोल बिल्कुल नहीं, पहले तो आपने एक बॉक्स में देखा, फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स में आप मुझे डालना चाहते हैं। हमारा कल्चर क्या है, ब्राह्मण कल्चर आत्म अभिमानी का कल्चर है। एक मिनट दृष्टि तो लो। तो जब तक आप प्रैक्टिकल रूप में कल्चर नहीं बदलेंगे तो बल जितनी भी आप क्लासेस सुनते रहो कुछ अंदर नहीं जाने वाला है। गट्स चाहिए कल्चर चेंज करने में। मेरा नियम है ना, मैं बता देती हूं, मेरा नियम है मैं फोटो नहीं खिंचवाती किसी से, दृष्टि फोटो नहीं। दृष्टि का एक सेकंड का कितना बड़ा महत्व है, अनादिकाल तक छाप रहती है वो, फिर पूरे कल्प में पहचान रहती है। हाँ प्यार रहता है, बीच में मोबाइल फोन डाल दो आपकी आंखें बिल्कुल डेड और भक्ति भी बिल्कुल डेड। पता है मुझे याद है दादी ने एक बारी बताया था हमको कि एक बहन थी, उस समय किचन जहां टोली किचन है वहां किचन था, तो सभी को बहुत परेशान करती थी, माना थोड़े जोश में आकर के बोलती थी, करेक्शन करती थी। तो दीदी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी बाबा के पास आए और उसकी शिकायत लेके आए, कंप्लेंट लेके आए कि बाबा कई लोग इस बहन की कंप्लेंट कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बोल रही हैं। बाबा ने दीदी का चेहरा देखा और बोला, अच्छा वो ऐसी है लेकिन आपका चेहरा क्यों बदल रहा है? फिर बाबा ने बोला ठीक है उस बच्ची को बोलो कल सवेरे 6 बजे आ जावे। आई वो माता, बाबा ने क्लास के पहले बाबा ने उसको लंबी दृष्टि दी और बोला, आपने जो भी भक्ति की है भक्ति मार्ग में वो सब झूठ था। उस बहन को तो थोड़ा शौक लगा कि बाबा ये क्या, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहती है देखो जो आपने सच्ची भक्ति की होती है, माना वो खोजते थे आप कि वो असली देवी देवता कौन है, और वो ही अभी आपके सामने खड़े हैं और अभी भी आपने पहचान नहीं किया, आप दुख निकालते हो उनकी, तो भक्ति मार्ग में क्या किया है आपने? पहचान से भक्ति नहीं हुई है। तो इसीलिए हमारा फर्ज कहता है हमको एक आत्म अभिमानी का कल्चर बनाना है, जिसमें एक एक लेन देन वृत्ति का, दृष्टि का, स्मृति का एक रॉयल रूप से हो, एक केयर के साथ हो, ऐसे फमिलियरिटी में नहीं। ये पूरी बातें पे ध्यान रख करके तब आपका मन आपके हाथ में रह सकता है, आप निर्संकल्प रह सकेंगे। अदरवाइज इसमें फंसो, उसमें फंसो, उस बात में फंसो, इसके पीछे भागो, इसका क्लास सुनो। कितने क्लासेस सुने हैं, अभी कॉन्स्टिपेशन थोड़ा हुआ है ना बुद्धि का, जितने क्लासेस सुने कितना धारण किया है, बस आंखें बंद करके सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में।
थैंक यू गोपी बहन जी, आपने पूरा हमारे ब्राह्मण माइंड का स्कैनिंग किया है ना, अच्छी तरह से स्कैनिंग किया कि बहुत अच्छी बात बताई, कोई गुस्सा करता है तो एक्चुअल में वो हमारी सहनशीलता की गुण को बढ़ा रहा है, परीक्षा ले रहा है ये भी नहीं, हमारे गुण को बढ़ाने के लिए वो हमें मदद कर रहा है। कितनी सुंदर बात है गुलजार दादी जी ने ये कही। और सुंदर बात, छोटी छोटी बातों में सोचने की क्यों जरूरत है, छोड़ दो ना, क्यों उनको बढ़ाते हो। तीसरा बहुत सुंदर कहा, यहां मैंने ऑफिस खोली है और इस ऑफिस में खाली दो ही बैठते मैं मेरा बाबा, कोई कुछ आकर सुनाए सुनाने दो, मुझे सिर्फ अंदर 20% कान खोलना है, इम्पोर्टेंट बात है वो अंदर लेनी है तो अंदर जाएगा नहीं। आज का ड्रामा आज के ड्रामे के ऊपर है ना, परफेक्ट। और बहुत सुंदर बात, हर बात में अपने ओपिनियन देने की जरूरत नहीं, कहां साक्षी हो जाओ ना, जस्ट उस बात को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। और उसके साथ साथ और भी सुंदर, साइलेंस की प्रैक्टिस, सारे दिन में बीच बीच में साइलेंस कर दो मन को, बार बार मन को चलाओ नहीं, उसको एकांत में लेके जाओ। तो यहां आते हैं तो नो शॉपिंग, नो गॉसिपिंग, ठीक है, तो यहां आकर सिर्फ एकांत का आनंद लो। तो ऐसी बहुत सुंदर छोटी छोटी उन्होंने हमें ट्रिक्स बताई है और इस आधार से हम सभी साइलेंस का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, राइट। तो चले बाबा को याद करते हैं। अच्छा, दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं, यस आइए। नो, पहले स्वागत था, अभी शुक्राना है।
हमें जाना है उस देश, तेजे ये साकारी बेश, जहां शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तेजे साकारी बेश, जहां शिव बाबा है। करना है जहां प्रवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहां शिव बाबा है वहां मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम। हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त है यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहां प्रवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहां शिव बाबा है वहां मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम। हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जग पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी। लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपनी देश, जहां अब वास करे। करना है जहां प्रवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहां शिव बाबा है वहां मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम। हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है।